रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं राम जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं जिसके रखवाले हैं राम उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं
बुद्धिमता है, वही जानता है मांगने वाले का हित, मेरे बच्चे का हित किस में है। हम कोई वस्तु मांगते हैं, वह वस्तु परमात्मा ही जानता है मांगने वाले के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी मांग तो वस्तु है, वह किस प्रकार का प्रभाव आप पर डालती है वह आप नहीं जानते। आप पुत्र मांग रहे हैं, आपको नहीं पता आपका पुत्र कालांतर में आपका शत्रु बन जाएगा, अतएव वह बेचारा दुविधा में है। इस देवी की मांग मुझे पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरी माता से आपकी प्रार्थना है। इससे बढ़ के इससे श्रेष्ठतर और कुछ नहीं मांगने को। परमात्मा देव तेरी मंगलमयी कृपा मेरे ऊपर सदा बनी रहे, इसमें सब कुछ आ जाता है। मैं जानता है कि बच्चा दुर्गुणी है, इसका नाक बह रहा है, मन मूत्र में डगमग है। अब कृपा मांगता है बच्चा तो उसे पता है कि पहले इसकी सफाई मुझे ही करनी है, सो कृपा में सब कुछ आ जाता है। परमेश्वर से परमेश्वर की कृपा ही मांगनी चाहिए, अपने लिए भी औरों के लिए भी। हाँ, इतना ज़रूर है जैसे मांगने वाले पर जब परमात्मा की कृपा हो जाया करती है तब एक प्रकार का अधिकार उसे मिल जाता है परमात्मा से और अधिक मांगने का। अब अपने लिए न मांग के तो वह औरों के लिए मांगना शुरू कर देता है, औरों के लिए भी वह कृपा ही मांगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकार चूंकि इस प्रकार का मिल चुका हुआ है कि वह चीजें खोल के भी परमात्मा के सामने रख सकता है, अतएव कभी वह वस्तु भी मांग लेता है, कभी वह व्यक्ति भी मांग लेता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ औरों के लिए। अतएव साधक जनों, जिनका जीवन परमेश्वर की कृपा से प्रार्थनामय हो गया हुआ है, संत महात्मा फरमाते हैं, उनसे निवेदन है कि अपने लिए कभी कोई भौतिक मांग नहीं रखनी है और दूसरों के लिए मांगने में कभी कंजूसी नहीं करनी, डटके मांगिएगा। परमात्मा को देवियों सज्जनों सच मानो बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी और से ना मांग के तो परमात्मा से ही मांगते हो। ये भूल हमसे प्रायः होती है, हम परमात्मा से नहीं मांगते, हनुमान जी से मांगेंगे, भैरों से मांगेंगे, इधर से मांगेंगे, उधर से मांगेंगे। तनिक सोचो, एक माँ जो घर पर इंतजार कर रही है, बच्चा बाहर गया हुआ है, मैं भोजन तैयार करके बैठी हूँ, आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है, अभी चपाती नहीं बनाई, उसके आने पर गरम गरम उसे परांठी बना के खिलाऊंगी। वह नालायक आके कहे कि मैं आज खाना माँ भर खाया, सोचें माँ को कितना धक्का लगेगा, कहेगी तो बेचारी कुछ नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अब आप आराम करो, दूध पी लो और आराम करो। ठीक इसी प्रकार से देवी सज्जन, परमात्मा का बच्चा बच्ची होने के नाते यदि वह परमात्मा से ना मांगते इधर उधर से मांगता रहता है तो ये परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे ये फर्क पड़ता है, एक साधक की साधना में ये सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री साधना के लिए प्रथम यात्रा के लिए निकले हैं, सबसे पहले उन्होंने दुराशा को मारा है एक ही बाण से, ताटका, ताटका दुराशा है। दुराशा अर्थात जहां है ही नहीं चीज, जो मेरी इजाजत के बिना दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती, उससे मांगना दुराशा है। आशा, निराशा और दुराशा, जहां चीज है ही नहीं, जो मेरी इजाजत के बिना, मेरी अनुमति के बिना, भगवान श्री गीता जी में यही कहते हैं ना, जो अन्य देवी देवताओं से मांगते हैं, मांग तो उनकी भी मैं ही पूरी करता हूं। पढ़ना गीता जी में स्पष्ट भगवान ने लिखा है, कोई देवी देवता मेरी इच्छा के बिना, मेरी इजाजत के बिना किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान ने बलाढ्य शब्दों में इसको स्पष्ट किया हुआ है। संत महात्मा इसे दुराशा कहते हैं, प्रतिभा है। आप चाहते हो कि आपकी साधना सफल हो तो साधन सबसे पहले आपको दुराशा को ही मानना होगा। परमात्मा के अधीन किसी दूसरे से कुछ भी अपेक्षा रखना, आशा रखना दुराशा है। Get it? परमात्मा इसीलिए दुखी होता है, इसकी साधना ये दुर्गुण होते हुए सफल नहीं हो सकेगी, ये अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अरे मैं बैठा हूं ना देने वाला, किस चीज की कमी है मेरे पास, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जहां तक कि कोई मुझे खरीदने वाला हो तो मैं स्वयं बिक जाने को तैयार हूं, मैं स्वयं अपने आप को देने को तैयार हूं, फिर मेरे होते हुए इधर उधर व्यक्ति भटकता फिरे तो मैं यही कहूंगा कि वह साधक अच्छा नहीं है, नालायक बच्चा है, उसकी साधना इतनी आसानी से सफल नहीं होती। यही निष्कर्ष निकलता है साधक जनों, मांगना है तो परमात्मा से, और परमात्मा से मांगना है तो फिर सबसे बड़ी चीज क्यों ना मांगी जाए जो परमात्मा से भी बड़ी है। मेरी माता और सज्जनों, मैं परमात्मा की मंगलमयी कृपा को परमात्मा से भी बड़ी मानता, जो परमात्मा नहीं कर सकता वह उसकी कृपा कर देती है। अतएव वह मांगो। जिस प्रकार परमात्मा का नाम परमात्मा से बड़ा है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा भी परमात्मा से बड़ी है, तो उससे जो बड़ी चीज है वह क्यों नहीं मांगते, जो सबसे बड़ी चीज है वह क्यों नहीं मांगते। वह इनकार नहीं करता, वही देता है। इसके साथ ही साधक शिवम प्रार्थना का प्रसंग समाप्त करते हैं। वह प्रसंग शुरू करते हैं परमात्मा के प्रति जानकारी, इसे ज्ञान कहा जाता है। भगवत भक्ति के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने लिखा है, यदि भक्ति करना चाहते हो तो आपको परमात्मा की जानकारी पूरी होनी चाहिए। जितनी आपकी जानकारी परमात्मा के प्रति बढ़िया होगी, उतनी आपकी प्रीति परमात्मा के प्रति बढ़िया होगी। आप परमात्मा से प्रीति करना चाहते हो अर्थात भक्ति करना चाहते हो, तो परमात्मा के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे होती रहती है, प्रीति बढ़ती जाती है तो जानकारी भी बढ़ती जाती है। प्रीति बढ़ जाती है तो पता लगने लग जाता है इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या चाहता है, इसको बाहर के रोग क्या है, अंदर के रोग क्या है। अब किसी अपने मित्र को खाने को पूरी कचौरी हलवा इत्यादि दे दो, वह बेचारा यही कहेगा ना, मित्र मुझे माफ़ करना, डॉक्टरों ने ये सब कुछ मुझे खाने को मना किया है, तो मैं कुछ नहीं खा सकूँगा। ये क्यों हुआ? इसलिए कि मित्र को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी होती तो उन्हें पता होता कि इसे डायबिटीज़ है, इसे मधुमेह है, इसे थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ECG में कुछ चेंजेस आई हैं, अतएव इन सब चीज़ों को उसे खाने को नहीं देना। तो परमात्मा की प्रीति ही परमात्मा का ज्ञान भी बोध भी आपको करवाती जाती है। आप अपनी प्रीति को बढ़ाना चाहते हैं तो परमात्मा अपनी जानकारी और देता रहता है, ताकि आपकी प्रीति परमात्मा के प्रति और बढ़ सके। सनातन धर्म, मानव धर्म, साधक शनु परमात्मा के तीन रूप मानता है। हर एक को जानने की आवश्यकता, हर एक को याद रखने की आवश्यकता। सर्वप्रथम निर्गुण निराकार रूप परमात्मा का, इसे संत महात्मा ब्रह्म कहते हैं। बच्चे लोगों, आपके लिए विशेषतया आज की बात, उसके अगले दिन की बात बहुत महत्वपूर्ण। परमेश्वर का शुक्र है छुट्टियां हैं, आजकल आप यहां बैठे हुए हो। पुनः सुनो, प्रथम रूप परमात्मा का निर्गुण निराकार। निराकार अर्थात जिसका आकार नहीं है, फॉर्मलेस। याद रखोगे निराकार को क्या कहते हैं? फॉर्मलेस। उसका फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है। निर्गुण, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। ये वेदांत का कॉन्सेप्ट है। ऐसे निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहा जाता है। वेदांत कहता है ये ब्रह्म है। हम दो भक्ति मार्ग के बन गए हैं, अतः हम ब्रह्म शब्द बहुत कम प्रयोग करते हैं। एकदा कहते हैं किसी परमात्मा के भक्त ने, वही पूछ सकता है, वेदांति नहीं। परमात्मा से कुछ पूछना है, कोई भेद लेना है, कोई भेद की बात करनी है, कोई अपनी बात करनी है, उनसे कुछ अपनी बात पता करनी है, तो भक्त ही कर सकता है। ये अधिकार ज्ञान में नहीं है, ये अधिकार प्रीति देती है और इसे भक्ति कहा जाता है। आज किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, कुछ आपको निर्गुण कहते हैं, मानो आपके अंदर कोई गुण नहीं, और कुछ कहते हैं सगुण, सद्गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सच्चाई क्या है? ये भेद की बातें कोई प्यार करने वाला ही पूछ पूछ करके तो पूछ सकता है, आप बताओ ना, अब सच में क्या हो, क्या आप में कोई गुण है कि नहीं? यदि है तो फिर निर्गुण क्यों कहते हैं, और यदि नहीं है तो फिर सर्वगुण संपन्न क्यों कहते हैं? मेहरबानी करके ये बात स्पष्ट करो। भगवान श्री मुस्कुराते हैं और वैसे ही पूछ पूछ करके उसे उत्तर देते हैं, कहते हैं वत्स, भगवान की भगवत्ता देखो साधक जनों, प्रभु का प्रभुत्व देखो, महानता देखो। कहते हैं वत्स, ये सत्य है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, सर्वगुण संपन्न, सारे गुणों का स्रोत, सारे गुणों की खान, सद्गुणों की खान अपने मुख से क्या कह रहा है वत्स, ये सत्य है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर ये सगुण क्यों कहते हैं, ये गुणवान क्यों कहते हैं? अरे भाई, जहां प्रीति होती है वहां गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ये भक्त लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मुझे निर्गुण होते हुए भी सद्गुणों से संपन्न मानते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है तो हम अपने आप को कितना गुणवान, गुणी इत्यादि इत्यादि कहते हैं। भगवान के पास माता सब कुछ है, लेकिन मैं कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो हूँ निर्गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। उस निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म कही ब्रह्म कही, वही जब सगुण निराकार हो जाता है, ये श्रेणी शायद पहले बहुत पहले कभी चर्चा तो करी थी, नाम तो लिया था, लेकिन शायद आप सबको याद ना हो, दो ही याद हैं आप सबको, एक तो है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। शास्त्र भरा है इन दोनों से, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वह तीसरा है, बीच वाला, जिसे सगुण निराकार कहा जाता है। है तो निराकार, स्वामी जी महाराज का परमात्मा सगुण निराकार है, आर्य समाज का परमात्मा सगुण निराकार है, मुसलमानों का परमात्मा सगुण निराकार है, इसी परमेश्वर परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है, जो सबका शासक है, दिखाई नहीं देता, निराकार है, आकार नहीं है, लेकिन सभी गुणों से संपन्न है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। आप बोलते हो ना, वंदे रामम सच्चिदानंदम, वे सच्चित आनंद गुण है, दयालु है, कृपालु है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, सर्वंतर्यामी है, सबके अंदर है, चूंकि निराकार है इसलिए सर्वव्याप्त है, निराकार ही सर्वव्याप्त हो सकता है। आप निराकार नहीं तो यहीं बैठी हैं, तो यहीं बैठी हुई हैं, आप अपने घर में भी नहीं हैं, लेकिन निराकार होती तो यहां भी बैठी हुई होती, तो अपने घर में भी बैठी हुई होती। इस दूसरे रूप का नाम है ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। समय हो गया है साधक जनों, जारी रखेंगे इस चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।